नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नायब सिंह सैनी हरियाणा में भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए, वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चेतावनी दी कि सीमा पार से होने वाली आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियां व्यापार तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयासों को कमजोर करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज शाम मॉरिटानिया पहुंचेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से संबंधित आदेश का पालन न करने पर हरियाणा और पंजाब सरकार की आलोचना की। बेंगलुरु में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका है। और स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज शाम पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल का मुकाबला फ्रांस के क्वेंटिन हेलीज से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में श्री अब्दुल्ला और उनके मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई।
उमर अब्दुल्ला, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir.
शपथ लेने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री और सकीना इटू, जावेद राणा, जावेद डार और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश शर्मा मंत्री के रूप में शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उमर अब्दुल्ला को लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए श्री अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। केंद्रीय गृहमंत्री और पार्टी पर्यवेक्षक अमित शाह ने आज पंचकुला में पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक के बाद ये जानकारी दी।
हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल बेद जी ने रखा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता है।
वरिष्ठ विधायक अनिल विज और कृष्ण कुमार बेदी ने श्री सैनी का नाम का प्रस्ताव किया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था और पार्टी को चुनाव में शानदार जीत मिली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्री सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली समेत कई नेता बैठक में उपस्थित थे। श्री नायब सिंह सैनी भाजपा विधायक दल के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलेंगे और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में आयोजित होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अर्थव्यवस्था और विकास के लिए शांति तथा स्थिरता बहुत जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि सीमापार से होने वाली आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी गतिविधियां व्यापार तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयासों को बाधित करती हैं। आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्री ने बताया कि जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियां, आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताएं और वित्तीय उथल पुथल से दुनिया भर में विकास और वृद्धि की गतिविधियां पहले से ही प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देशों के बीच सहयोग, परस्पर सम्मान, संप्रभुता का आदर और भौगोलिक अखंडता की मान्यता पर आधारित होना चाहिए। डॉ. जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की व्यवस्था में भारत के वैश्विक प्रयासों के महत्व का भी उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार लाने की भी पैरवी की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और उसकी प्रभावशाली भूमिका व्यापक सुधारों से विकासशील देशों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीयर्स से मॉरिटानिया के लिए रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति को गर्मजोशी से विदाई दी गई। उन्हें पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के प्रधानमंत्री नादरी लारबोई और अन्य उच्च अधिकारियों ने विदाई दी। मॉरिटानिया की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिटानिया के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति की यात्रा को कवर करने गई हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिटानियन प्रेसिडेंट मोहम्मद औद गसाउनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। प्रतिनिधि मंडल बातचीत और मॉरिटानिया के मंत्रियों के साथ बैठक एजेंडा में है। वह एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगी, जहां वह भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगी। बाद में शाम को राष्ट्रपति तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मलावी के लिए रवाना होंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा।
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन आज मेक्सिको और अमेरिका की दो देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। इस महीने की 17 से 20 तारीख तक मेक्सिको की अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान श्रीमती सीतारामन मेक्सिको की सिलिकॉन वैली गुआडा लाजारा शहर में टेक लीडर्स राउंड टेबल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने के कारण हुए वायु प्रदूषण से संबंधित एक आदेश का अनुपालन न करने पर हरियाणा और पंजाब राज्य सरकारों की आलोचना की है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल हरियाणा सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
पीठ ने उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा तय की है। मामले को लेकर शीर्ष अदालत ने हरियाणा के मुख्य सचिव को एक समन भेजा है, जिसमें उन्हें 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। पंजाब के मुख्य सचिव को भी इस दिन अदालत में उपस्थित रहने और आदेश का पालन न करने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। यह बताने को भी कहा गया है कि अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नीलम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में एक मजबूत गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मंत्र के साथ काम कर रही है। उन्होंने आज नई दिल्ली में पहले भारतीय फाउंडेशन गुणवत्ता प्रबंधन IFQM सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही।
फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैड अ प्राइम मिनिस्टर हु इवन फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट not only recognized wealth creators, not only appreciated the role that all of you are playing in building the nation, but also spoke about zero defect and zero effect.
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि दुनिया भर के कुल डिजिटल लेन देन का 46% हिस्सा भारत में होता है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय 6G सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि इस वर्ष अगस्त में 2.75 अरब डॉलर के लेन देन में से करीब 1.5 अरब UPI के माध्यम से हुए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। संचार मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत 6G प्रौद्योगिकी में विश्व का अग्रणी देश होगा। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल इंडिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल सिद्धांत पर आधारित है।
The Prime Minister's two imperatives while talking about a digital world, a digital India, are based on the fundamental premises of Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Vikas and Sabka Prayas. And the best example of that is that India's innovation in her resolve and in her march of digital India.
विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मानकीकरण कार्य के लिए शासी सम्मेलन है। ये सम्मेलन हर चार साल में आयोजित किया जाता है। ये पहली बार है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA का आयोजन भारत तथा एशिया प्रशांत में किया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत को वैश्विक दूरसंचार एजेंडे और भविष्य की तकनीक को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर रहा है। साथ ही भारतीय स्टार्टअप को बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद पहुंचाएगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए जर्मनी से आई एक प्रतिभागी अनीता डोहलर ने कहा कि आने वाले समय में भारत वैश्विक दूरसंचार बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है।
With India having achieved so many developments in the last years, and I think it will be extremely important for everyone globally to work together going forward. And India definitely will play a significant role, for instance, having the second largest mobile network already installed, and we look forward to collaborate.
घाना से आई एक अन्य प्रतिभागी नाना आकोसुआ ने कहा कि भारत दूरसंचार क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति है और इसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है।
And I think this is a very important meeting. We are going to make standards. This is where we have a lot of regulators, all the telecom giants here. So all outstanding issues that we want to have for the next 4 years with regards standardization.
इस 10 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम के दौरान दूरसंचार उद्योग की आवश्यकताओं और भविष्य पर आधारित विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें नवाचार को लेकर भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, ऑडियो विजुअल मीडिया से जुड़े विषय, डेटा सुरक्षा और डिजिटल विभाजन की चुनौतियों से जुड़े विषय शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक 100 अरब डॉलर को पार करने के लिए तैयार है। यह वृद्धि मजबूत मांग और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसे सरकारी प्रयासों का परिणाम है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल हैंडसेट और IT क्षेत्र 75% से अधिक राजस्व में योगदान देकर बाजार में सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की उपस्थिति में सक्रिय सदाशयता अभियान की शुरुआत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उन्हें पहला सक्रिय सदस्य बनने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि एक आंदोलन है जो जमीनी स्तर पर भाजपा को और मजबूत करेगा तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रभावी योगदान सुनिश्चित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका है। भारत ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर है। स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल का मुकाबला आज शाम फ्रांस के क्वेंटिन हेलिज से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:50 पर शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नायब सिंह सैनी हरियाणा में भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चेतावनी दी कि सीमा पार से होने वाली आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियां व्यापार तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयासों को कमजोर करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज शाम मॉरिटानिया पहुंचेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से संबंधित आदेश का पालन न करने पर हरियाणा और पंजाब सरकार की आलोचना की। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।